पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो भगवान कहते हैं अब उस गरुड़ पुराण को तो जब पढ़ाना चाहिए था जब वो जीव था, जब वो जीवित था, ताकि इस ज्ञान को सुनकर वो डरता, डर के बुरे काम ना करता और उस पाप से बचता। अब वो तो अपने सारे पाप की मालगाड़ी भर ले गया, क्योंकि गलत साधना करवाई तो उन्हें रास्ता ठीक बताया नहीं। अब कोई लाभ नहीं है उस गरुड़ के पाठ कराने से, क्योंकि आप अधिकारी भी नहीं हो। यदि कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते है, गुरु बिन देते दाने है, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं जय पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ हवन ना की होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या हो वह कबू ना फर ही। अब गुरु कौन है? गुरु, गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अब यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे। वो टीचर, जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, इसको गुरु ही काफी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि सातवें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इसे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था ब्राह्मण ने कि तुझे सातवें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सब ने कहा कि श्री बद भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूं, मैं कथा कर देता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सातवें दिन परिणाम आना था, सातवें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ, इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कथा सुना के राजा की कुछ मोक्ष करा सकूं, यहां से गति करा सकूं, क्योंकि श्री मद भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास वेद व्यास जी है, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूं, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। तो कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहां पहुंचा। अब सुखदेव ऋषि के यहां आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट, यानी जो एयरप्लेन का रेंट है, वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया। और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद भगवत सुधा सागर की, 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अपुण्यात्मा ये कहते हैं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहां कोई भी ये पाठ करते फिरते उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं। तो यहां क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे, पीछे गरुड़ पड़ाई। और फिर क्या कहते हैं कि भाई नरसे तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है, अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इनको इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए हम मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सद ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सदग्रंथ जो है अपने, जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो ये पूरे विश्व के मानों के लिए हैं, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सदग्रंथों की, उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था, फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम हिंदू, पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सच मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन कराकर तेर मीटर में कर लेते हैं, यानी वो गटा गटू का थोड़ी सी, ये इतनी बना ली, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा, खाओगा, फिर पाछे हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरुजी, ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। अब फिर क्या बताते हैं कि नरसेती तो पशुआ की जय, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन भोरे की तो कुरड़ी चरने जाई। अब हम कितना सुंदर आहार करते हैं, बढ़िया फुलके खाते हैं, कभी खीर बना लें, हलवा बनावे, काजू किशमिश सेब संतरे, दही घी मक्खन और भाई कभी लाडू जलेबी भी खाते हैं। कहने का भाव यह है कि इस मनुष्य शरीर में प्रभु ने हमें कितना सुंदर आहार दिया है, और एक सत भक्ति ना करने से, भक्ति भी करें और वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, वो भी आपका जीवन व्यर्थ होता है। और फिर भक्ति नहीं करते उससे फिर हमने क्या मिलता है, जैसे के फिर बैल बन गया, गद्दा बन गया। उसमें कहते हैं ये 56 भोग नहीं मनबोरे की तो कुरडी चरने जाई, ये सुंदर आहार नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब तो जरा सी भोग लगती है कहीं रस्ते में होटल आ गया वहां खा लिए, चाय की इच्छा हुई जब रोक के गाड़ी उतर गाड़ी में तो चाय बनवाई पी के चल पड़े, प्यास लगी पानी पी लिया, फिर ये सुविधा नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, एक जरा से काम के बिना सारा काम बिगड़ गया। हम सब कार्य करते करते परमात्मा का नाम जाप करना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें विशेष समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं बनती। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए अवश्य थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप जो सिमरण करते हो, काम करते करते बस में जा रहे सफर करते हो, सिमरण कीजिए, मत गप्पे मारिए साथी जो दूसरा बैठा है उसके साथ। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सुता उठे रात्रि ना खुल जाती है, नींद से जाग जाता है तो उठते ही सिमरण करने लग जाए, सांस का जुण सा भी सूत बैठ जाए उससे याद आ जाए, उससे गमंड जा, चाहे ब्रह्म गायत्री मंत्र हो, चाहे अपना यो सतनाम है, जो भी उसी का रट शुरू कर दे हैं, फिर वो अपना चलते फिरते जब भी ध्यान आवे उसको याद रखे प्रभु की, ऐसे भक्ति करनी होती है। ये हठ योग आसन लगा करके ये सब मना किया गीताजी में, गीताजी में यहां तक लिखा है चौथे अध्याय में कि अर्जुन यदि तू हठ योग करके बैठ गया, यानी एक स्थान पर बैठकर साधना करने लग गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसके लिए आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, क्योंकि युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, और उसको करते करते भी युद्ध करते समय भी भर भगवान को भजना होता है, तो आम काम में तो हम आसानी से प्रभु की याद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की भजन भक्ति के लिए हमने विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी हमने साधना ठीक शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये 56 भोग कहां मनबोरे, फिर कुरडी चरने जाई, फिर ये सुंदर आहार नहीं रहेंगे, फिर पशु बन के क्या खाएगा, कैसे रहेगा, समय पर सब इच्छा से नहीं खा सकता, भूख लगी रहेगी, नाक डल जाएगी, बैल बन जाएंगे और बन जाएंगे किसी रस्से के साथ। अब फिर क्या होता है कि प्रेत शिला पैजा ब्राजे पितरों पिंड भराई, बहुत श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब कितने निर्णायक ज्ञान दिया है, क्या कहते हैं, रबोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं, अपने लला के बाल उतरुआ वे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं, अब जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौवा बाप बनैया रह बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया रह बोड़ी सी दुनिया सत गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि आन उपासना में आते हैं ये कौन कौन से। माई मसाणी सेड शीतला भैरो भूत हनुमंत साहेब से नारा रहे जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेड शीतला और भैरो भूत हनुमंत उस परमात्मा से दूर रहेगा जो इनकी पूजा करता है जो इनको पूजंत। गुड़गांव में वाली माता पे जाते हैं खासकर यहां हरियाणा के लोगों में ज्यादा प्रचलित है गुड़गांव वाली माता या वैसे भी जहां पास में किता अपना जुगाड़ जोड़ रखे बका रखे हैं वहां भी जाते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा देखो कैसे गुमराह कर दिया इन नकली गुरुओं ने बुढ़िया जागी अपने पोते ने गेल लेकर और साथ न पुत्र वधु को और वहां उस माता वाले स्थान पर जाकर नाई बैठा होता है और ये बहका रखे हैं कि बाल उतरवा के अपने इष्ट धाम पर चढ़ाने चाहिए न तो नहीं तो वो रूस जाएगा। अब बताइए इष्ट उन बाला न के शर्म मारेगा हमारे बाला न इष्ट खावन के ना की तरफ फूकन के ना इनका क्या करेगा इष्ट। अब वो क्या करते हैं वहां जाती है बुढ़िया वहां एक नाई बैठा होता है वहां भीड़ इतनी लग रही होती है तो वो बाहर 2 रुपये में बाल कटते हैं थोड़ा 10 रुपये में काटते क्यों मजबूरी है कटवाने पड़ेंगे उनको। तो वो क्या कहती है बुढ़िया ले भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे और भाई देख ध्यान करे कच्चा ध्यान रखना कच्चा सिर है मेरे पोते के कहा चीना लग जाए भाई देख रहे ध्यान ते और वो 2 कैंची भरते हैं बस इतने दे दे द्वार हो से जल्दी और उन बालों को क्या करते हैं अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं जाकर। वह पुजारी क्या करता है उन बालों ने ठा के कट्टे में डाले जा और शाम ने कुर्डिया पे फेंक जा वो बता के बैंक में जमा कराओगे उन बालों को उसने भी दोबारे पटकने ठा गए। तो ये हम पे कर रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अपना ना यही कट कूट के आप घेर दिया रुकते ठाक इस चक्कर में मत पड़ो ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी नकली गुरुओं ने नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कहीं चीना लग जा और तेरे बेटे को दर्द हो पीड़ा हो जा पोते को और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता इतना प्यारा लागे कैंची लागण का भी डर और एक बालक एक अमूक जो बोल भी नहीं सकता उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया। वो माता कभी बकरे नहीं खाती वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव कोई भी देवता मांस आहार नहीं करते ये हमारे को बहका रखा है उन उज्वाड़ के स्वादुओं ने जो मरकर भूत बन गए और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे फिर वह पत्र भूत बन गए वह फिर उन्हीं यजमाना मां का बोलते हैं मैं भैरव बोलू हूं मैं हनुमान बोलू हूं मैं माता बोलता हूं और एक बकरा चढ़ा दो उनके वो गुमराह कर देते हैं और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोलिया करते उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे बकरे चढ़ाने लगे कटवाने लगे इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं फिर माता की पूजा देखो कहते कच्चा पाका भोजन बनाकर माता धोकने गईया माता जो धोक लाण का दिशा बनाकर चलता हा काम तो बेरा कुत्ते ने खाना हो तो वो काचा पाका भोजन बनाकर माता दोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी ही बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान कहते हैं। वो काचा पाका भोजन बनाकर माता दोकने गई और वो माता के दोकने माता की पूजा के लिए जो वहां गुलगुले पूड़े चढ़ाती है और कुत्ते बाट देखा करे बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं और खाकर उस कुत्ते उस माता के आहार को और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया या मार देती इसको। नगर बोली सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता दोकने गईया और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे तो उनका उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लठम लठा झगड़ा ठानता रहता है और मरने के बाद वो आड्डा नठा कर गंगा में गिर जाता है और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, काम मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने और उसको मना किया हुआ था भी ना तो ये फूल फल ठाणे हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गेर काटनी नहीं, अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है दरिया है चलते पानी में वहां पर डाल दियो, कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद कर अपने कितने भी खेत में आंगन में घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई किता नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि मट्टी में ढूंगा पांच सात फुट पांच चार फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो या किसी नहर में डाल दिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं, तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहां पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहता जी मैं वैसे समाज के लिहाज से डर से समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गेरन गए थे गंगा में तो वहां एक पांडा पाया, उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का डीवाई इतनी बड़ी बई और नो पलट पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो कुछ गांव ताए हो अच्छा तो नो बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का हला गया कि यो दुश्मन तो नहीं सोचा हम रोज मरा नो कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह यानी कोई दादा मरिया था उसके बाद ही नंबर आया यहां तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौन और मनावे है ये मरने की बाट देखे मरे तोड़े तोड़े अमावा इन 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हो इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डाल का उसकी गति हो जाएगी। नंबर दो गति मोक्ष कराने के लिए 13 मी करो पंडित जी बुलाओ और फिर वो पंडित जी पाठ पुट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक्के और फिर कहे कि इसका महीना बनाओ, फिर छह माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ। क्या इसके श्राद्ध निकालो? श्राद्ध किस लिए कि इसका इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हुई। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठाकर ऊपर रख देता है छत पर, और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवियों को, कौवे तो वैसे भी ध्यान रखे अगर कहां कुछ खान की मिल जाए वो तो अंगित खा जाए, अगर घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जाए चोच, और सरेआम ऊपर दख दे कौवे टूट के पड़ा करें, तो कौवा आते ही वो खाता है। तो गुरु जी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे भोग लगा दे तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपने सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना वो कौवा बाप बनाया, रे वोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। अपुणात्मा ये तो मैंने आपको बताया सवसंवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक ये पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जय संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में स्थान मिल जाता, जिसके विषय में गीताजी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीताजी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीताजी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नाशवान है, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात तो सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्श गीताजी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण केंद्र दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था। जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों निकाल रखा है, तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके तीन पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग भी नहीं रहा था। उसमें वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए, बेटा हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो। पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाह वैसे दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुचलुच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय हाय, क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे सरहद निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242 ये नीचे रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे, उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बनाया था, वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह करता है वह स्वधा के उच्चारण से देवताओं को स्वधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा असन रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। उसको मना कर रहे हैं, किंतु फल इच्छा रही दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता, फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है? अब यहां क्या बताते हैं, रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई, ये देखो ये स्वयं तो चार भूत बने हुए हैं, पहले के ये चार दिखाई दिए उसने, चार पिताजी दादाजी परदादा फिर दादा का भी पिता परदादा का पिता, तो ये चार दिखाई दिए। ये स्वयं कहते हैं कि हाँ इसमें सत्य है, ये स्वयं पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें त्रिक भी मिथ्या नहीं है। फिर अग्रम मग्रम के रहेगी, अब फिर वो अग्रम मग्रम जो की है वो पितरों की है, ना कि किसी वेद सदग्रंथ की नहीं है। और वेद जो है ये परमात्मा का आदेश है, और ये जो श्राद्ध व्राद के जो तुक्केबाजी ये अन्य पितरादि का आदेश है, तो उसको हमने नहीं मानना है। जैसे आपके उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था थानेदार दरोगा, और उस दरोगा जी ने उस व्यक्ति ने एक दिन दरोगा जी से प्रार्थना की कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान कर रखा है, मैंने पंचायत आदि से भी फैसला करवाने की चेष्टा की पर वो बाज नहीं आता, मैं क्या करूं? दरोगा जी ने कहा कि मार लठ माप देख लूंगा। अब उस एसएचओ के कहने पर उसके मित्र ने आकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उसके सिर में लठ मर गया, लगते ही वो पड़ोसी मर गया। अब राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिलती थी। अब वो जो व्यक्ति पड़ोसी मर गया और उसने उस एसएचओ की आज्ञा का पालन करके संविधान राजा का भंग कर दिया, तो उसे सजाए मौत हुई। वही उसका मित्र उसको द्रोगा पकड़ के ले गया, थाने में रोक दिया, कोर्ट में उसको सजा मिल गई और सजाए मौत का भागी हो गया। ठीक इसी प्रकार जो वेदों और गीता जी में लिखा है उसके विपरीत जो कोई अन्य संत ऋषि या गुरु या पितर कोई भी यह संदेश देता है वो भगवान के विधान को खंड करवा रहा है, जिससे हम सजा के पात्र होंगे। अब इसमें एक विष्णु पुराण में प्रमाण है, के इन पितरों ने ही सनकादि जो ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, इन्होंने एक राजा को बताया और वो श्राद्ध की विधि बता रहे हैं ये ऋषि लोग, और कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पितर ही मुझे बता गए थे, यानी पितरों ने ही मुझे बताया है श्राद्ध आदि निकालना, यानी कोई किसी भगवान की तरफ आदेश से आदेश नहीं है। फिर उसमें आगे चलकर क्या बताया है कि जैसे पितरों के लिए श्राद्ध निकालना है तो जैसे 2, 4, 6, 8 यानी ऑड नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए, उनको भोजन कराइए, और भूतों के लिए करना है, देवों के लिए करना है तो 1, 2, 1, 3 जैसे 5, 7, 9 इवन नंबर, ये यानी इस तरह ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में लास्ट में ये लिखा है श्राद्धों का सारा विवरण देकर, ये लिखा है कि यदि एक योगी का अर्थ है जो सत्य साधक, जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित ना होकर के एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगा तब तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। उसके लिए लिखा कि उन तो उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण जा, उनको तत्व दंडवत प्रणाम कर, वो जैसे बताए फिर तू साधना कर, फिर तेरा कल्याण होगा। उसके लिए बताया है कि एक संत, एक सत साधक, सच्ची साधना करने वाले को भोजन कराने से कितना लाभ होता है कि 1000 ब्राह्मणों को जो वो श्राद्ध के लिए उद्धार करने आते उनका भी कल्याण कर दे और यजमान का भी कल्याण कर दे और मोक्ष भी प्राप्त करवा दे। ओए होए, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि एक तत्वदर्शी संत को आहार कराने से अर्थात उसका उससे भोजन कराने से आपको आप 1000 ब्राह्मण बैठा दे उसके सामने, उनका भी उद्धार करे जो तुम्हारे पितरों का उद्धार करने आते हैं, और वो तेरे पितरों का भी उद्धार करे, उन ब्राह्मणों को भी पार करे और यजमान को भी सुधार दे, क्योंकि वो फिर तत्व ज्ञान बताएगा, सब बकवास छुटा कर तत्व ज्ञान के आधार से साधना बताएगा। तो हम वही पूजा करनी चाहिए जिससे सब लाभ हो। अब ये विष्णु पुराण में लिखा है, अब मुझे वो मिल नहीं रहा। इस प्रकार हम वो साधना करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, मोक्ष भी हो। हाँ, ये मिल गया, ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं आपको कितना अनमोल ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री श्री विष्णु पुराण और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनिलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनिलाल गुप्त, और ये तीसरा तृतीय अंश, तृतीय अंश, और ये देखिएगा अध्याय 16, अध्याय 15 का, क्योंकि 16 आगे चलता है, ये अध्याय 15 का विवरण चलता हुआ आ रहा है, ये 16वां यहां होगा, ये 16वां समाप्त होता है इसके लास्ट में, ये 213 पृष्ठ पे लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, मृत पितरगण, मातामह, कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है, चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक सहस्र माने 1000 ब्राह्मण भी हो और यजमान भी हो, और ये ऊपर जो श्राद्ध निकालेंगे वैश्व देवगण पितर मातामह सब को कहते हैं, ये संतुष्ट तब हों। एक योगी को भोजन कराने से उस उनके सामने यदि एक योगी यानी सत साधक सच्ची साधना करने वाला एक है, वो 1000 ब्राह्मणा का भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार करे और थरे पितरों का भी उद्धार करे। जय सतगुर की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, सुरत नृत मन पवन पियाना शब्द शब्द समाई, दास गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। अपुन आत्माओं, ये इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और इस ज्ञान को कौन बताता है? सतगुरु बताते हैं। तो सतगुरु क्या बताते हैं? हमारे सतगुरु दे रहे ए लारे, सतनाम सुमरे मन में लारे, मारे साहेब दे रहे सतनाम सुमर मन मैलारे, भगवान सुमर मन मैलारे, सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन मैलारे, मारे साहेब दे रहे सतनाम सुमर मन में, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना देला रे, खाली आया जागा संग चलना दे लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हम सुमर मन मेला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा सन से अकेला रे, यही मिलाया जागा हम से अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन मैला रे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला,
चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन मैला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन मला रे, मारे साहेब दे रहे। सत साही अब वो तत्वदर्शी संत यही बताएगा, ये ज्ञान कराएगा कि कौन सी साधना हमने नहीं करनी चाहिए और कौन सी करने योग्य है, और उसका प्रमाण अपने वेदों में सदग्रंथों में भी होना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको उनकी न तो कार्य सिद्ध होता, उनका कोई गति होती है न सिद्धि होती है, और न ही वो कोई सुख को प्राप्त होते हैं। इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानिए, अर्थात जो दंत कथा के आधार पर जो बता रहे हैं उनको नहीं मानना, सदग्रंथों को आधार मानना। सदग्रंथों में आते हैं पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, और फिर जो पुराण जो है ये किसी अन्य ऋषि भगवान के बोले हुए नहीं है, ऋषि महर्षि या ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ही के बोले हुए उच्चारित ज्ञान है, और यदि वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो गीता जी में तो यहां तक लिखा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, वो मूर्ख लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं जिस कारण से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा ये पवित्र गीता जी, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये श्री जयदयाल गोविंद का इसके प्रकाश अनुवादक हैं, और ये है प्रकाशक हैं, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब ये देखना श्लोक नंबर 16 का 23 और 24, अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 और 24। 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और फिर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अर्थात शास्त्रों में देखे अनुसार ही साधना कीजिए। आपको श्राद्धों के विषय में निर्णय हुआ कि रुचि ऋषि के चार पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके यही पितृ पूजा ध्यान उपासना करके स्वयं भूत बन बैठे और अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को भी गुमराह कर दिया, उनको भी नरक में डाल दिया, जबकि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वेदों में ऐसा ही लिखा, यह सत्य है कि कर्मकांड को अविद्या यानी मूर्खों का ज्ञान ही बताया है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। और पवित्र विष्णु पुराण में लिखा है कि एक योगी यदि मिल जाए वो हजार ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए, उन ब्राह्मणों का भी बेड़ा पार कर यजमान का भी पितर पुत्रों का सबका कल्याण करवा दे। तो पुण्यात्माओं आपको वो साधना मिली हुई है जो आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण इसी साधना से होगा जो दास के पास है। विश्व में किसी के पास ये साधना वर्तमान में नहीं है। आगे इस ज्ञान को समझ कर नकली गुरु बेशक बन जाओ, वो भी दुश्मन होंगे इस मानव जाति के, क्योंकि उनके पास उपदेश देने का अधिकार नहीं होगा। सत साहिब।